है? तो धर्म के अलावा कोई भी अलग कोई चीज अगर है तो उसको निकाल दिया जाए और खाड़ करके फेंका जाए, है ना। धर्म क्षेत्र का ही मतलब है, जैसे धान का खेत होता है तो उसमें धान के ही पौधे होने चाहिए, और जो किसान होता है वो क्या करता है, धान के पौधों के अलावा जितने भी घास फूस है वो क्या करता है, उखाड़ करके फेंकता है कि नहीं, क्योंकि धान का खेत है वो। उसी प्रकार से और भी जैसे गेहूं का है या सरसों का है ना, तो जो किसान है वो उसके अलावा एक ही फसल वो चाहता है, एक प्रकार के खेत में दो तरह की फसल नहीं चाहता, है ना। उसी प्रकार से भगवान कृष्ण जो है ना धर्म के पिता है, मतलब किसान है भगवान कृष्ण, है ना, और ये उनका धर्म क्षेत्र है, है? तो यहां पर जो है धर्म की जितनी फसल है उसको तो बढ़ाना है, है? अधर्म की जो फसल है वो उखाड़ना है भगवान को। तो भगवान कृष्ण यहाँ स्वयं मौजूद है तो वो क्या करेंगे, अधर्म की फसल को उखाड़ उखाड़ करके फेंकेंगे, खत्म करेंगे, है ना। तो जो कौरव दुर्योधन आदि जितने अधर्मी लोग हैं उनका भगवान क्या करेंगे, उखाड़ेंगे, खत्म करेंगे, है ना। तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की कई प्रकार की व्याख्याएं प्रभुपाद जी ने यहाँ पर दी है। तो वास्तव में ये धर्म जो ना क्षेत्र कुरुक्षेत्र है और इसमें धर्म और अधर्म के बीच में ही युद्ध हुआ है। भगवान कृष्ण जो है ना जब आते हैं इस पृथ्वी में तो किस लिए आते हैं, धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं, है ना, यानी धर्म की फसल खूब अच्छी उगाने के लिए आते हैं भगवान, है? धर्म संस्थापना अर्थाय परित्राण, और साधु नाम जो धर्म का पालन करने वाले हैं उन साधुओं की रक्षा करते हैं भगवान, और बिना आशाय चतुष्कृताम, और जो दुष्ट हैं, है? जो अधर्मी हैं उनका विनाश करने के लिए आते हैं। तो ये बहुत जरूरी है, अगर धान का खेत है अगर उसमें जो घास फूस जो उग रही है अगर किसान नहीं उखाड़े तो क्या होगा, जानते क्या होगा, हाँ धान की फसल जो है ना फिर अच्छी नहीं होगी, है, क्योंकि जमीन की जितनी भी शक्ति है वो घास फूस ले लेगी और धान की जो बाढ़ है धान की जो पैदावार है वो मारी जाएगी, है कि नहीं। फिर बहुत जरूरी है अधर्म को खाड़ना, ये बहुत जरूरी है, विनाश करना बहुत जरूरी है। अगर किसी चीज का आपको निर्माण करना है तो कुछ आपको विनाश करना ही पड़ेगा, है ना। तो इसलिए भगवान जो है विनाश करने के लिए आते हैं इस पृथ्वी में, तो वो विनाश कार्य भगवान का बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उनको स्थापना करना है धर्म की, है ना। तो धर्म और अधर्म के बीच में बिल्कुल स्पष्ट युद्ध, स्पष्ट युद्ध जो कुरुक्षेत्र का जो युद्ध है, तो ये जो है ना बिल्कुल एक तरफ बिल्कुल शुद्ध धर्म है और दूसरी तरफ पूरा पूरा शुद्ध अधर्म, 100% अधर्म, 100% अधर्म एक तरफ है और दूसरी तरफ 100% धर्म है, है ना, जहां की बीच में लड़ाई हुई है ना। तो ये भगवान का कार्य है, भगवान दुनिया को दिखाना चाहते हैं, हैं? कि धर्म और अधर्म के बीच में जब लड़ाई होती है तो किसकी विजय होती है, धर्म की विजय होती है, है ना। तो जो युधिष्ठिर महाराज हैं, 5 पांडव हैं, ये बिल्कुल शुद्ध जो है ना धर्म के सिद्धांत पर चलने वाले हैं, और इतने इतने इनके जीवन में संकट आए कष्ट आए लेकिन इन्होंने धर्म के रास्ते से एक कदम भी हटाया नहीं है, जरा भी जो है ना विचलित नहीं हुए धर्म के रास्ते से, यहाँ तक कि उनके सामने ही उनकी पत्नी को जो है नग्न किया जा रहा था। सोचिए इससे बढ़कर के और क्या मतलब हो सकता है, और जबकि इनके पास में इतनी शक्ति है कि देवताओं से भी उनको भय नहीं है, देवताओं मनुष्य क्या देवताओं से भी भय नहीं है, भीम और अर्जुन जैसे जो है योद्धा है, जो कि आज तक कभी भी मतलब युद्ध में हारे नहीं है, किसी भी युद्ध में भीम और अर्जुन हारे नहीं, और युद्ध भी एक नहीं अनेक अनेक युद्ध हुए हैं, है ना। और ऐसे योद्धाओं के सामने भी जो है उनकी पत्नी को नग्न किया जा रहा था, लेकिन वे जो है धर्म से बने थे, धर्म से बने थे, इसलिए उन्होंने जो है सहन किया। 12 साल का वनवास दिया, उनका जो राज्य है कपट के जुए से जो ना उनका राज्य छीना गया, और उनके ऊपर कई कई अत्याचार किए गए, और जबकि पूरा पूरा अधिकार उनका ही था राज्य में। और दूसरी तरफ बिल्कुल पूरा पूरा धर्म, जरा भी धर्म नहीं है दुर्योधन के अंदर। जब बात हुई कि 12 साल के बाद 1 साल का अज्ञातवास होगा, अज्ञातवास 1 साल का होगा, और उसके बीच में अगर आप पहचान लिए गए तो आपको फिर से 12 साल का वनवास होगा, तो ये भी शर्त स्वीकार करने के बाद उन्होंने 12 साल का वनवास स्वीकार किया, फिर 1 साल का अज्ञातवास भी किया, और 1 साल के अज्ञातवास में उनको वो नहीं ढूंढ पाए, तो उसके अनुसार उनको फिर राज्य मिलना चाहिए, है ना। तो उसके बावजूद भी दुर्योधन ने कहा, क्या कहा, साफ कहा कि युद्ध के बिना सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा, मतलब साफ साफ अधर्म वो बोल रहा है ना। तो अब युद्ध जरूरी था, और ये युद्ध जो है ना अब मतलब आपसी इंद्रिय तृप्ति के लिए युद्ध नहीं था, ये तो बिल्कुल अब धर्म के लिए युद्ध था, धर्म के लिए। एक अधर्म के लिए युद्ध करना है, दूसरा धर्म के लिए युद्ध करना है, एक अधर्म के लिए युद्ध करना है इंद्रिय तृप्ति के लिए, और दूसरा धर्म के लिए युद्ध करना है कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए युद्ध करना है ना। तो ये जो है ना बिल्कुल युद्ध एक बहुत महत्वपूर्ण युद्ध है, जबकि आजकल के जो युद्ध होते हैं वो ऐसे नहीं है, दो देशों के बीच में अगर लड़ाई होती है तो ऐसी स्थिति नहीं होती है कि उन दोनों में से कोई भी पक्ष हो जो कि मतलब शुद्ध धर्म का पालन करता हूं, नहीं है। लोग जो है इंद्रिय तृप्ति के ही लिए कार्य करते हैं, है ना। उसमें जो है ना ये 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 चोरी है जब कोई व्यक्ति जो है जैसे गीता में भगवान कहते हैं, तेरे दत्ताना पदाई भी जो भुंगते स्थिति नेवसा, जिसने दिया है उसको ना अर्पित करते हुए जब कोई व्यक्ति भोगना चाहता है तो वो चोर है। जो भी व्यक्ति कहता है कि ये देश मेरा है, ये जमीन मेरी है ना, तो यहीं पर ही वो जो ना चोर हो जाता है भगवान की दृष्टि में, है ना। तो इस प्रकार से जो ना शुद्ध धर्म मिलते ही नहीं आजकल, लेकिन यहां पर शुद्ध धर्म है। पांडवों को जो है जमीन से और जो है भोगों से कोई आसक्ति नहीं है, जैसे अर्जुन ने कहा, नकांक्षे विजयम कृष्ण न जा राज्यम सुखानिजा, मुझे राज्य नहीं चाहिए, मुझे विजय नहीं चाहिए, है ना। तो फिर युद्ध किस लिए कर रहे हैं, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए युद्ध कर रहे हैं। जो फल है जो कर्म का फल है वो भगवान को अर्पित कर रहे हैं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, और उसमें जरा भी आसक्त नहीं है। युधिष्ठिर को राज्य प्राप्त हो गया तो उन्हें कोई खुशी नहीं है, युधिष्ठिर को, पांडवों को इतना भी खुशी नहीं है कि उनको राज्य प्राप्त हो गया। वो जैसे जंगल में रहे और बहुत कठिनाइयों में रहे, और अभी वो राजमहल में रहते हैं, तो उन्हें कोई मतलब इस बात से अंतर नहीं पता चलता है कि नहीं कुछ हमें मतलब जीवन की विशेष सुविधाएं प्राप्त हो गई हैं? बिल्कुल नहीं। और जैसे ही छोड़ने का समय आया और उनको पता चला कि भगवान कृष्ण चले गए हैं और अब जो है हमारा समय भी आ गया है छोड़ने का, तो शरीर तो बहुत अच्छा था उनका, बिल्कुल अच्छे जो ना जवान थे और बहुत भोग सकते थे, लेकिन तुरंत छोड़ दिया है, एक सेकंड नहीं लगाया छोड़ने में, राज्य को छोड़ करके त्याग करके चले गए। तो ये है समर्पित, भगवान को समर्पित जीवन, है ना। तो आजकल की जो लड़ाइयां होती हैं दोनों पक्ष में जो है ना क्या है, इंद्रिय तृप्ति ही जो है केंद्र है दोनों पक्ष में। तो इस तरह से जो है मतलब वैसा धर्म नहीं प्राप्त होता है। लेकिन हाँ ऐसे कह सकते हैं दो चोरों के बीच में जो है ना जब झगड़ा होता है तो हाँ ये ऐसा देखा जाता है, भाई एक चोर जो है ना ज्यादा अन्याय कर रहा है दूसरा चोर। जैसे मान लो किसी बैंक से चोरी की है दो आदमियों ने, फिर दोनों मिलकर के अगर हिस्सा बटा रहे हैं, है ना, तो झगड़ा होता है और कोई अगर बेईमानी करता है तो कहता है तुम बेईमान हो, मैं सही हूँ, तुम बेईमान हो, है ना। तो ऐसे हो सकता है कि उसमें एक व्यक्ति सही हो एक व्यक्ति बेईमान हो, बराबर हिस्सा नहीं, लेकिन अगर निष्पक्ष दृष्टि देखा जाए तो दोनों ही चोर हैं, क्योंकि चोरी की महल पे जो है ना जो लड़ाई कर रहे हैं, तो चाहे कोई कितना भी सही क्यों ना हो, लेकिन वो अगर परमेश्वर की दृष्टि से देखा जाए, है ना, अगर ऊपर की दृष्टि से देखा जाए तो वो क्या है, चोर है, दोनों के दोनों चोर हैं, है कि नहीं। तो इस तरह से आजकल को जो साम्यवाद है तो वो भी इसी प्रकार से, जो कम्युनिज्म है ये भी उसी प्रकार का है, क्योंकि उसमें वो क्या मानते हैं कि देश की जितनी भी संपत्ति है वो सब क्या है, देशवासियों की है और सबको बराबर मिलनी चाहिए। अब देश की संपत्ति हम सब देशवासियों के बराबर बराबर है ये बांटने, तो ये क्या है, भगवान से चोरी करके आप बंटवारा कर रहे हैं, है कि नहीं। क्योंकि ईशावास्यमिदं सर्वम्, जो कुछ भी इस जगत में है वो सब ईश्वर की संपत्ति है, तेरे तक तेरे भुंजीता, उस ईश्वर को समर्पित करके, है ना, और फिर तुम ग्रहण करो जो तुम्हें ईश्वर ने दिया है, तेने तेक्ते ने भुंजी था माँ ग्रह कसे सुधनम, दूसरों की संपत्ति में जो है अधिकार मत जमाओ। तो ईश्वर की संपत्ति मान करके, ईश्वर का दिया हुआ मान करके तुम उसमें संतुष्ट रहो, किसी को थोड़ा मिला किसी को ज्यादा मिला, है ना, तो ये मान करके कि ईश्वर ने मुझे अगर थोड़ा दिया है तो उसमें मैं संतुष्ट हूं। तो इस प्रकार से जो है ये आध्यात्मिक साम्यवाद कहलाता है। लेकिन आजकल का जो संवाद है उसी प्रकार से है, जैसे कई चोरों ने मिलकर के किसी धन की चोरी की है, अब उसमें जो ना वो सच्चे बनना चाहते हैं कि भाई हमें बराबर बराबर हिस्सा मिलना चाहिए, और जो है ना इसमें अपने को बड़ा नैतिक मानते हैं कि देखो हम बिल्कुल सही बंटवारा कर रहे हैं, लेकिन है क्या, चोरी का मान सब चोर हैं, है ना। तो साम्यवाद जो है ना इसीलिए ईश्वर की दृष्टि में क्या है, क्या है, चोरी। चोर लोग जो है ना बड़े धार्मिक बन रहे हैं कि भाई ये चोरी का माल जो है ना हम लोग आपस में बराबर बराबर बांटें, और ये जो है ना सबसे जो है ना सही काम है, और हम जो है बिल्कुल सही व्यक्ति हैं, सच्चे आदमी हैं। कहाँ सच्चे हैं, है ना। कोई प्रश्न किसी का, इनका प्रश्न है कि धृतराष्ट्र को जब पता था कि मेरे पुत्र मारे जाएंगे तो उन्होंने युद्ध को रुकवाया क्यों नहीं। हाँ यही तो जो है एक दुर्बुद्धि कहलाती है। दिमाग जो है ना जब किसी व्यक्ति का खराब होता है तो वो देख करके और जानबूझ करके भी जो ना वो गलत काम करता है, और फिर भी आशा करता है ना। तो यही जो है ना इसे कहते हैं मूर्खता, कि पता है कि ये जो ना गलत है और इससे जो ना वो होगा, बुरा परिणाम होगा। जैसे चोर होता है ना, तो उसके अंदर चोरी करने की इतनी इच्छा, इंद्रिय तृप्ति की इतनी ज्यादा इच्छा है कि वो देख रहा है कि कितने लोग जो ना चोरी करके पकड़े गए हैं और उनको जेल में भर्ती किया गया है और तकलीफ भोग रहे हैं, वो फिर भी चोरी कर रहा है ना। तो ये सोचते हैं, ये लोग सोचते हैं कि हो सकता है 1% तो चांस है कि मैं ना पकड़ा जाऊं, इस तरह से वो सोचता है ना। इंद्रिय तृप्ति की इतनी ज्यादा प्रबल इच्छा है कि व्यक्ति जान बुझ करके जो ना वो गलत काम करता है। जैसे पतंगा होता है ना, पतंगा है? आग में जाता है और इतनी तेजी से जाता है आग में, है? किस लिए? जलने के लिए जाता है। लेकिन वो क्या सोचता है कि नहीं नहीं इसमें जो ना जो इतना अच्छा रूप है? जो मुझे दिखाई दे रहा है आंखों को, तो मैं जितने पास में जाऊंगा उतना इस रूप का जो ना मैं आनंद प्राप्त करूंगा, और वो खत्म होता है, नष्ट ही होता है, कुछ नहीं। तो ये चीज जो है इसी को कहते हैं मूर्खता, काम, है ना। भगवान ने बताया ना, अर्जुन ने कहा कि जो व्यक्ति जानता है कि ये पाप कर्म है और नहीं करना चाहता है, फिर क्यों कर रहा है? भगवान कहते काम एस क्रोध एस, रजोगुण से उत्पन्न काम है, जिसने कि वो व्यक्ति जान बुझ के पाप कर्म कर रहा है, गलत काम कर रहा है। इनका प्रश्न है कि कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र किस जगह है, तो मैं आपसे पूछता हूँ किस जगह है? हरियाणा में है, ठीक है। हाँ, कुरुक्षेत्र 200 किलोमीटर है, लेकिन कुछ गीता की जो टीकाएं हैं वो बहुत ही गलत हैं, और जब पहले श्लोक में ही अगर किसी व्यक्ति ने गलत टीका कर दी तो फिर वो पूरी की पूरी गलत होती जाती है। जैसे कि कोई गणना होता है ना, सवाल, सवाल लगाने में एक ही जगह अगर उसने दो लिख दिया, है ना, एक और एक मिल करके उसने चार लिख दिया, तो जितना सवाल है वो और गलत होते जाएगा। उसी प्रकार से पहले श्लोक में भी अगर किसी की व्याख्या अगर थोड़ी सी गलत हो गई तो फिर वो जितनी गीता की व्याख्या करता है वो और गलत होती जाती है। तो पहले श्लोक में ही कुछ टीकाकारों ने कुरुक्षेत्र को नहीं माना है, कुरुक्षेत्र को नहीं माना कि कुरुक्षेत्र एक स्थान है और ऐतिहासिक स्थान है, और जो कौरव हैं और पांडव हैं उन्होंने युद्ध किया था, ये कोई सच्ची ऐतिहासिक घटना है, वो नहीं मानते हैं, है ना। तो यहीं से गीता की व्याख्या वो गलत होगी, होती है, और फिर वो आगे और गलत होती जाती है। तो वो जो टीकाकार हैं वो क्या मानते हैं कि नहीं नहीं ये कुरुक्षेत्र जो है ना कोई संसार में कोई स्थान नहीं है, वो तो ये शरीर ही कुरुक्षेत्र है, है? और जो 5 पांडव हैं तो वो अटकल बाजी करते हैं, तो कहते हैं हाँ हाँ 5 इंद्रियां हम 5 पांडव हैं, ये शरीर ही कुरुक्षेत्र है और 5 इंद्रियां ही 5 पांडव हैं, है? तो फिर ये कौरव कौन है? 100 कौरव। हाँ हाँ हमारे अंदर ही आसुरी वृत्तियां जो हैं कई प्रकार की, ये कौरव हैं, है? तो जो है ना फिर कृष्ण कौन है? हाँ हाँ वो जो अपने अपने शरीर के अंदर जो आत्मा है वो कृष्ण है। तो फिर लड़ाई किस बात की हो रही है? हाँ हाँ इस शरीर में जो है ना जो आसुरी वृत्तियां हैं और ये जो 5 इंद्रियां हैं इनके बीच में ही लड़ाई हो रही है, इनके बीच में ही लड़ाई हो रही है, तो मतलब और कोई वास्तविक लड़ाई हुई ही नहीं। तो जहां इस प्रकार की गलत व्याख्या करके और कृष्ण को भी जो ना इसमें से निकाल दिया, भगवद गीता से 5 पांडवों को भी निकाल दिया कि कोई व्यक्ति थे और एक ऐतिहासिक ये घटना हुई है, और इतनी लड़ाई हुई कि खून की नदी बही थी, है ना, वो कुछ ना मान करके, और जो है जहां उन्होंने गीता की इस प्रकार की व्याख्या करी तो समझो कि शुरू में ही अगर गलती कर दी तो आप जानते हो कि फिर कितनी गलती होती जाएगी, है ना। जैसे रास्ते में शुरू में ही अगर आपने थोड़ी सी दिशा आपने बदल दी, है, रास्ता ऐसा सीधा है और आप थोड़ा सा ऐसे मुड़ गए, गलत, अब आप जितना आप चलोगे सीधा उतना अधिक रास्ते दूर होते जाओगे, है ना। तो ये जो है ना ऐसा नहीं है, वास्तविक जो है ना ये घटना है महाभारत की, और जो है वास्तव में धृतराष्ट्र और ये जो 100 उनके पुत्र थे और 5 पांडव थे ये हुए हैं, ये कोई कल्पना नहीं है। तो जैसे महात्मा गांधी हैं तो उन्होंने गीता की टीका लिखी है, तो ये मान करके कि कोई युद्ध हुआ ही नहीं है ना, तो ये बहुत बड़ा अपराध है। ये बहुत बड़ा अपराध है कि भगवान स्वयं जो ना साक्षात भगवान कृष्ण ने उस युद्ध में भाग लिया है और जो है कौरवों का विनाश करवाया, पांडवों को विजय प्राप्त कराई है ना, उस सब जो ना मिटा दिया है ना। यहां तक कि महात्मा गांधी तो ये यहां तक कहते हैं कि अगर वास्तव में अगर युद्ध हुआ था, अगर महाभारत का युद्ध अगर वास्तव में अगर युद्ध हुआ था तो फिर मैं इन धर्म ग्रंथों को बिल्कुल मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं, इनकी शिक्षा कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं हूं। मतलब भगवद गीता की टीका से ही उन्होंने अहिंसा के सिद्धांत को पुष्ट करने का प्रयास किया है कि भाई कोई ये धर्म नहीं है कि कोई किसी से युद्ध करे। और महात्मा गांधी ने जो है ना इस गीता के आधार पर ही जो है अहिंसा की स्थापना की और यही कहा कि जो राजा है उसका कोई कर्तव्य नहीं है कि किसी व्यक्ति को दंड दे। जबकि प्राचीन काल में और जो ना जो जो बड़े बड़े राजर्षि थे तो वे भी जो ना अपराधी को दंड देते थे और किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड देते थे और जो अत्याचारी हैं उनका दमन करते थे, शत्रुओं से युद्ध करते थे, अपने राज्य को बढ़ाते थे, धर्म की स्थापना करते थे। तो धर्म की स्थापना के लिए हिंसा की आवश्यकता है ना। तो महात्मा गांधी ने अपने अहिंसा के सिद्धांत को पुष्ट करने के लिए कि हिंसा किसी भी प्रकार की हिंसा अनुचित है, हर प्रकार की हिंसा अनुचित है, उन्होंने गीता का अनर्थ कर दिया। तो ये जो है बहुत बड़ा अपराध है, क्योंकि भगवान जो है स्वयं जब आते हैं विनाश करने के लिए तो फिर हम क्यों जो है ना मतलब कुछ नए सिद्धांत निकाले कि नहीं नहीं कि हम हमें किसी को दंड नहीं देना चाहिए। तो ये संभव नहीं है। अगर आप शांति की स्थापना करना चाहते हो तो आपको जो है ना आवश्यक है कि हिंसा करो, हिंसा आवश्यक है अगर आप जो है अहिंसा की स्थापना करना चाहते हो, जरूरी है। राजा के पास जो ना शक्ति होनी चाहिए जिससे कि वो दुष्टों का दमन कर सके। तो ये बहुत आवश्यक है कि जब अपराधी को दंड दिया जाता है तो बाकी जो प्रजा है उससे पता चलता है कि भाई मैं ना करूं, क्योंकि जिसने ये गलत काम किया उसको ये दंड प्राप्त हुआ, तो मैं ना करूं। तो इस प्रकार से धर्म की स्थापना के लिए जरूरी है कि जो अपराधी है उसको दंड दिया जाए। इनका प्रश्न है कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये किसका जप करते थे। देखिए नाम का दूसरा अपराध, हम जो है भगवान के नाम के 10 अपराध रोज बोलते हैं, तो भगवान के नाम का दूसरा अपराध क्या है? ब्रह्मा शिव दुर्गा आदि देवताओं को भगवान विष्णु के समान समझना या उनके से स्वतंत्र समझना अपराध है। तो भगवान विष्णु के ही नामों का जप करते हैं ब्रह्मा और शिव, ठीक है। ब्रह्मा जी भगवान विष्णु की नाभि के से उत्पन्न कमल से पैदा हुए है? और ब्रह्मा जी ने फिर भगवान विष्णु से ज्ञान प्राप्त किया है? तो ब्रह्मा जी भी भगवान विष्णु के भक्त हैं। और शिव जी भी कहते हैं ईशो हम सर्व जगताम नाम नाम विष्णु ही जाप कहा। शिव जी कहते हैं कि मैं समस्त जगत का ईश्वर हूं लेकिन विष्णु के नामों का ही जाप करता हूं, है ना। सत्यम सत्यम बदाम में तद हरे नाम गतिर नाम। शिव जी कहते हैं मैं सत्य बताता हूं कि हरे नाम ही मनुष्यों की गति है कि नहीं। और ब्रह्मा जी ने भी जो है ना यही कहा है। ब्रह्मा जी भी कहते हैं इति छोटे से कम नाम नाम कलिकल्म सनातनम नाथ परतरोपाय सर्व वेदेश दृश्यते। ये 16 नाम, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, ये 16 नाम ही कलयुग के कलमसों का नाश करने वाले हैं। नाताह परतर उपाय सर्व वेदेश दृष्टि, इससे बढ़कर के और कोई भी उपाय समस्त वेदों में नहीं है, है ना। तो ब्रह्मा जी भी इसी को बताते हैं और शिव जी भी बताते हैं, शिव जी भी पार्वती को यही बताते हैं, हरिम बिना नाश ही किंचित पाप निस्तारकम कलो तस्मान लोको धारणार्थम हरि नाम प्रकाश हुए, कि कलयुग में हरि नाम के सिवा और कोई दूसरा उपाय नहीं है पाप को दूर करने का, इसलिए लोगों का उद्धार करने के लिए हरि नाम को प्रकाशित करना चाहिए। सर्वत्र मुच्यते लोको, तो सब जगह लोग जो ना मुक्त होंगे, कैसे, हरि नाम के द्वारा, है ना। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की, जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की, प्रीति राधा पार्थार्थी ललिता विशाखा की, त्रिचिकोणताई भगवान की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की। हरे कृष्णा
हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.